हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो, गीता का सार, श्लोक क्रमांक 55। इसमें भगवान अर्जुन के द्वारा 54th श्लोक में जो प्रश्न किया गया है उसकी पहली लाइन यानी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं उसके चर्चा करेंगे, उसका उत्तर देंगे। श्री भगवान वाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का देखिएगा, कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। तो इस बारे में श्रीमद् भागवत में कथन आता है कि जिसके हृदय में अकिंचन भक्त, जो भगवान श्री कृष्ण का अकिंचन भक्त होता है, यस्यास्ते भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासतेश्वरः हरव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेना सति धावतो भई। श्लोक बोलता है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, अकिंचन भक्त है, उसके अंदर सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं, और जो भगवान का भक्त नहीं है वो बाह्य रूप से कितना ही गुणवान लगे लेकिन मन के रथ पर चढ़ा हुआ है। और मन का रथ हम देखते हैं, कभी इस डायरेक्शन में जाता है, कभी उस डायरेक्शन में जाता है। और स्पेसिफिकली मुख्य रूप से हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है तो वो उसके जो गुण हैं वो फिर प्रकाशित नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति हमसे बहुत मीठा मीठा बोल सकता है और ऐसा हमें लगेगा कि वो बहुत नम्र हो गया है, लेकिन तभी तक जब तक उसकी इंद्रिय तृप्ति हमारे द्वारा बाधित नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं जैसे हरिदास ठाकुर हैं और महान महान भक्त हैं, उन पर कई कष्ट आए, बाह्य दृष्टि से उनकी इंद्रियों को बहुत कठिनाई दी गई, लेकिन जिन लोगों ने उन पर दुख दिए उनके प्रति कोई उनके मन में प्रतिकार भावना नहीं थी, अपितु उनके दुखों को देखकर वो दुखी हो जा रहे थे। तो ये अद्भुत गुण है भक्तों का जो भक्ति के द्वारा आता है। ये समझना चाहिए कि भक्ति, ये जितने भी गुण बताए जा रहे हैं, जैसे भगवान ये लक्षण बता रहे हैं, तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये लक्षण हम कैसे इस गुणों को प्राप्त करें। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो अभिधेय है, जो प्राप्त करने का तरीका है, वो भगवान की भक्ति है। हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण, भगवान की सेवा, इसके द्वारा ही हमारे अंदर सारे ये सद्गुण आ सकते हैं, आ जाते हैं, आ जाएंगे। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। क्यों दब जाती हैं? क्योंकि विषय वासनाओं की जगह कृष्ण वासना आ जाती है। जो विषयों को भोगने की इच्छा होती है, इंद्रियों को कार्य करने की इच्छा रहती ही है, लेकिन क्योंकि इंद्रियों को कृष्ण की सेवा करने के लिए कार्य मिल जाते हैं तो इसलिए विषय भोगने के कार्य के प्रति उनकी निवृत्ति अपने आप हो जाती है। इसके बारे में आगे प्रभु भगवान बताएंगे। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। तो हमने आपको बताया, यहाँ पर प्रभुपाद क्लियरली समझा रहे हैं कि भक्ति ही माध्यम है, भक्ति के द्वारा ही हम कृष्ण इस दिव्य चेतना को या अस्तित्व प्रज्ञता को प्राप्त हो सकते हैं। अपनी शक्ति से, अपने बल से हम नहीं प्राप्त हो सकते। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्म संतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वे अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। ये प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं अत्यधिक उन्नत आत्मा? हमने बहुत पहले भी चर्चा किया था कि आत्मा का जो गुण है वह है, एक गुण है चेतना, और चेतना का लक्षण है ये भावना कि मैं हूँ, और उस मैं और हूँ के बीच में आप क्या भरते हैं ये हमारी चेतना के अनुसार होता है। अगर हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ तो फिर हम शरीर के अनुसार कार्य करेंगे, चेतना हमारी उसके शरीर के अनुसार भी होगी। अगर मैं सोचता हूँ मैं आत्मा हूँ तो हम ज्ञान के स्तर पर रहेंगे, लेकिन अगर हम सब समझते हैं कि नहीं, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, तो ये आत्मा की सर्वोपरि सर्वशुद्ध चेतना का लक्षण है। और जब इस प्रकार की स्थिति आत्मा को मिल जाती है, या कह सकते हैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में आत्मा वापस आ जाता है, आ जाती है, हम आ जाते हैं, तो फिर जीवन में कोई कष्ट नहीं रह जाता। चाहे बाह्य दृष्टि से वो जीवात्मा भौतिक जगत में भी रहे, फिर भी वो आध्यात्मिक जगत के सुख का आनंद की अनुभूति कर सकती है। तो इसी बात को बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे कि इस समय हमारे जो हृदय में मन में इच्छाएं आती रहती हैं, उनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, वो आत्मा के लिए बाह्य है। जैसे समझे इस बात को, हम लोग जब सोचते हैं कि हमारा हमारे जो जो खुशी है वो आंतरिक होनी चाहिए, तो उसका अर्थ हम सोचते हैं कि हमारा मन जो है वो हमारे अंदर है और हमारा शरीर हमसे बाहर है। लेकिन वस्तुतः आत्मा के लिए मन और शरीर दोनों ही बाह्य है। तो शरीर का सुख या मन के सुख, ये दोनों ही आत्मा के लिए बाह्य है। लेकिन भक्ति में हम वो क्रिया करते हैं जो भले ही बाह्य दृष्टि से करें, यानी अपने मन और अपने इंद्रियों के द्वारा करें, अंततो गत्वा वो हमको अंदर की तरफ मुड़ने के लिए फायदा करती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भले ही भक्ति की क्रियाएं बाह्य लगे, ऐसा लगे कि हम बाह्य क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन ये सारी क्रियाएं भक्ति में हमको सहायता देती हैं और हमारी चेतना को भगवान की तरफ मोड़ने में बहुत लाभ करती हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर ये जो इच्छाएं हैं वो आत्मा से उत्पन्न हो रही होती, जो भोग की इच्छाएं हैं, तो उनको त्यागना बहुत मुश्किल होता। तो इसी बात को शिला बलदेव विद्याभूषण अपनी कमेंट्री में श्लोक में बताते हैं कि जब व्यक्ति उन इच्छाओं को त्याग देता है जो उसके मन से उत्पन्न हो रही हैं और आत्मा में पूरी तरह से संतुष्ट रहता है, तो ऐसा व्यक्ति सिद्ध प्रज्ञ होता है। ये सिद्ध प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण के बारे में बता रहे हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारी इच्छाओं को त्याग देता है ताकि भोग किसी भी एक भोग वस्तु के प्रति उसकी कोई इच्छा नहीं रहे, और इच्छाओं को त्यागने का कारण ये है क्योंकि ये मन के कारण है। मनोगतान मतलब मन के द्वारा उद्भूत है, मन में उत्पन्न होती हैं। मन में कुछ संस्कार हैं पूर्वगत किए गए कर्मों के अनुसार, जिसके अनुसार कुछ वस्तुओं को, कुछ अनुभव को हम अनुकूल मानते हैं, कुछ अनुभवों को हम प्रतिकूल मानते हैं, मतलब अच्छा नहीं मानते, और इसी के कारण हमारा मन इन्हीं सब विचारों में फंसा रहता है। ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ बुरी है, और इस प्रकार से हम लोग कुछ कार्य करना चाहते हैं, कुछ कार्य नहीं करना चाहते, और कर्म बंधन में हम फंसे रहते हैं। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा की, तो अगर ये आत्मा का गुण होता तो भगवान बोलते कि आत्मगतान, लेकिन आत्मगतान नहीं बोल रहे हैं भगवान, यहाँ बोल रहे हैं मनोगतान, मन से उद्भूत होने वाली, मन से ओरिजिनेट होने वाली जो इच्छाएं हैं, इनको जीवात्मा त्याग पाता है क्योंकि इससे अपने आप को अलग देख पाता है कि उसकी जो इच्छाएं हैं वो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हमें भक्ति में और योग की पद्धति में समझना पड़ेगा कि इच्छाओं की फैक्ट्री है हमारा मन, भौतिक इच्छाओं की फैक्ट्री, और इनसे अपने आप को अलग करना होगा। और आप देखेंगे कि भले ही हमको स्पष्ट रूप से ना दिखाई पड़े जब हम भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तब स्पेसिफिकली जो छुपी या सुप्त इच्छाएं हैं वो हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं। और इसके लिए हम लोग भक्त लोग बोलते हैं जब हम जब करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता या हमारे पुराने संस्कार हमको दिखाई पड़ते हैं। तो ये होना स्वाभाविक है क्योंकि अभी हम अपने मन से बहुत अधिक पहचान किए हुए हैं। जब हम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन जो है उस जप के प्रभाव से हम अपने आप को अपने मन से अलग देखने लगते हैं। तब हम देखते हैं हमारे मन में ये सब इच्छाएं आ रही हैं, वो इच्छाएं आ रही हैं, ये करने की इच्छा आ रही है, ये पुराने संस्कार आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भक्त है वो उन इच्छाओं पर कार्य नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है वो उन सारी इच्छाओं को त्यागता है, अर्थ है मतलब इच्छाएँ जो उठती भी हैं मन में उन पर वो कार्य करना बंद कर देता है और उसमें रुचि दिखाना बंद कर देता है, उनको फीड करना, उनको खाना देना बंद कर देता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से अग्नि से हम ताप को नहीं निकाल सकते, उसी तरह से आत्मा के पास से सेवा करने की भावना जो भगवान के प्रति है, जो प्रेम भावना, वो नहीं निकाल सकते। लेकिन क्योंकि मन आत्मा से अलग है, इस कारण से जो मनोगतान मन से उत्पन्न इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, उनका त्याग किया जा सकता है और वो भक्ति के द्वारा होता है। भक्ति करते करते जब उसको कोई भी आसक्ति नहीं रह जाती मन की इच्छाओं के प्रति, तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। और उसका कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ये है कि वो जो जीवात्मा है वो भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा में असली सुख को प्राप्त कर रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आत्मनः तुष्टः, अगर इच्छाओं को खत्म कर दिया, या क्या कह सकते हैं, भौतिक इच्छाएं जो मन से उद्भूत हुए हैं और निकल रही हैं उनके प्रति आसक्ति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा कहीं कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं कर रही है, क्योंकि आत्मा आनंदमय है। इसलिए किसी न किसी व्यक्ति से, कहीं ना कहीं से उसको सुख मिलना चाहिए, लेकिन उसको क्योंकि हायर सुख मिल रहा है, उच्चतर सुख प्राप्त हो रहा है भगवान की भक्ति करके, सच्चिदानंद सुख की प्राप्ति हो रही है, इस कारण से वो भौतिक सुख को त्याग देता है, उसमें उसको रुचि नहीं होती। अगर मान लीजिए किसी को बहुत सुंदर फीस्ट खाने को मिला है तो सूखे चावल चिवड़े क्यों खाएगा? ठीक है, तो अब उसका जो मन है ऐसे व्यक्ति का, उसको साधना नहीं करनी पड़ती, ऐसा व्यक्ति का मन अपने आप ही केवल आध्यात्मिक विषयों में ही रुचि अनुभव करता है। इस बारे में श्रुति कहती हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामयेस्य हृदि श्रितः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नते। तो इसमें बोल रहे हैं कि जब हृदय में सब भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तो हमको समझ में आना चाहिए कि जो बद्ध आत्मा या मर्त्य व्यक्ति है वो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर गया है। तो ये चीज जो है श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी सारार्थ वर्षण टीका में बताया था। अब हम लोग बताते हैं और हम थोड़ा सा बलदेव विद्याभूषण की इसमें देखेंगे क्या कहते हैं वो। एक इंटरेस्टिंग चीज वो यहाँ बता रहे हैं बलदेव विद्याभूषण की, जो आत्मा है वो लकड़ी की तरह नहीं रह सकता इनर्ट डल, बल्कि जब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है एक अपने कृष्णदास के रूप में, जैसे वहाँ प्रभुपाद जी भी समझा रहे हैं, अपने को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर वो आत्मसंतुष्ट हो जाता है। आत्मसंतुष्ट मतलब कृष्ण की भक्ति में संतुष्ट हो जाता है। और इसी बात को श्रीमद् भागवत में बताया गया है, सवे पुंसाम परो धर्म यदो भक्ति रधोक्ष जे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। अगर भगवान कृष्ण के चरणों में शुद्ध भक्ति, इसका लक्षण है अहेतु की, मतलब बिना किसी भौतिक इच्छा के, और अप्रतिहता यानी लगातार अगर वह भक्ति में स्थित हो जाता है, ऐसी भक्ति हो मिल जाती है उसको, तो उससे आत्मा को सुप्रसिद्धि, आत्मा को खूब सुख मिल जाता है। और जब इस प्रकार का सुख उसे भक्ति से मिलने लगता है, तो फिर जो मनोगतान, जो मन मानसिक कल्पना के द्वारा हम भौतिक भोग की कल्पना कर लेते हैं कि इसमें हमें कोई संतुष्टि मिल रही है, उससे व्यक्ति निवृत्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार की इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से या सुख से निवृत्त है, वो उसी व्यक्ति का मन समाधिस्थ हो जाता है। समाधिस्थ मतलब लगातार कृष्ण में उसका मन आविष्ट होता चला जाता है। इस चीज को शिला बलदेव विद्याभूषण ने अपनी गीता भूषण टीका में समझाया है। तो समराइज करते हुए हम देखेंगे कि जो व्यक्ति, जो सिद्ध प्रज्ञ व्यक्ति है, उसका मुख्य गुण क्या है कि मानसिक मनोधर्म से उत्पन्न इच्छाओं का वो पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। त्याग क्या, वैराग्य हो जाता है, उन्हें कोई उनकी अच्छी बुद्धि नहीं होती कि बहुत अच्छी चीज है, और साथ साथ भगवान की भक्ति में उनको सुख प्राप्त होने लगता है। और हम कैसे उसको प्राप्त करेंगे? प्रभुपाद इसको समझाया है भक्ति के अभ्यास के द्वारा। इस भक्ति के अभ्यास के द्वारा हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आगे के लक्षणों के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। हरे कृष्णा।